लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, धन मानव के जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह हमारे लिए आवश्यक और जरूरी है, क्योंकि हम धन के द्वारा ही अपने जीवन की सारी जरूरतमंद चीजों को प्राप्त करते हैं जो हमारी जीविका हेतु आवश्यक हैं। वर्तमान समय में मानव के सभी कार्य यदि देखा जाए तो धन प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। हमारा विद्या अर्जन करना, विद्या अर्जन के उपरांत रोजगार की खोज करना, दिन रात अपने कार्य को लेकर एड़ी चोटी एक करना, जिससे हम अपनी जीविका हेतु धन अर्जन कर सकें। श्रोताओ, अतः खेतों में लगे फलों के लिए पानी की जितनी आवश्यकता होती है, उतनी ही आवश्यकता इस भौतिक जीवन में अपने गुजर बसर हेतु हमें धन की जरूरत होती है। लेकिन वहीं जिस भांति अतिवृष्टि के कारण खेत के फलों को नुकसान पहुंचता है, उसी भांति धन की अधिकता मानव के जीवन हेतु विनाश का कारण बनती है। हम इसका उदाहरण अपने दैनिक जीवन, अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं। श्रोताओ, 26वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठ हमारे लिए धन से संबंधित बातों का जिक्र करते हुए हमें अपने जीवन में धन के प्रति हमारे मनोभाव और अपने आचरण का अवलोकन करने का संदेश देते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने आप में इस बात की परख करें कि हम अपने धन का उपयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं।
एक अमीर था जो बैगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक की यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिसे वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिंगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उसे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर और जीवनदायी वचन हमें अपने में इस बात का एहसास दिलाए कि हमारा धन, जिसे हमने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाया है, ईश्वर की ओर से दिया गया हमारे लिए एक अनमोल उपहार है। अतः हम इसका उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि उनकी मदद हेतु भी करें, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में जरूरतमंदों के रूप में देखते और पाते हैं। श्रोताओ, नबी आमोस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ इसराइल के धनवानों के प्रति ईश्वर के धिक्कार को प्रकट करता है, जो दावतें उड़ाते और अपने समृद्धि में जीवन यापन करते हैं। वे इसराइल की दरिद्र प्रजा के प्रति कोई चिंता के भाव नहीं दिखलाते हैं। श्रोताओ, अपने में धनवान होना और अपने लिए धन का उपयोग करना कोई बुरी बात नहीं है। यह हमारे लिए बुराई का कारण तब बनती है जब हम इसे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ और अपनी मौज मस्ती के लिए खर्च करते हैं। जब हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गरीबों और अभावग्रस्त लोगों को देखते हुए भी अनदेखा करते और अपने ही फिक्र में ऐशो आराम और मौज मस्ती का जीवन जीने में मशगूल रहते, तो हम जीवनदाता ईश्वर की अवहेलना करते हैं, जिन्होंने हमें धन की समृद्धि से नवाजा है। श्रोताओ, आज के सुसमाचार में हमने ऐसे ही संदर्भ का जिक्र सुना। धनवान और लाजरुस का दृष्टांत हमें यह नहीं कहता कि धनी व्यक्ति ने किन किन कार्यों को करते हुए अपने लिए धन संग्रह किया। यह हमें यह नहीं बतलाता कि उसने धन कमाने हेतु कितनी मेहनत की, बल्कि यह हमें उसके धन के उपयोग करने की बात कहता है। वह मखमली वस्त्र धारण किए रोज दिन दावतें उड़ाया करता था। वहीं उसके फाटक में कोढ़ ग्रस्त लाजरुस अपनी दयनीय स्थिति में पड़ा रहता और धनी के मेज से गिरने वाले टुकड़ों से अपना पेट भरने की कोशिश करता, लेकिन उस धनी व्यक्ति ने अपनी संपन्नता में गरीब लाजरुस की कोई चिंता या फिक्र नहीं की। यह स्पष्ट रूप में गरीब के प्रति उसकी उदासीनता को व्यक्त करता है। श्रोताओ, उसकी यह उदासीनता मानव में व्याप्त स्वार्थ के भावना को दिखलाती है, जहां हम सिर्फ अपने बारे में सोचते, अपनी जरूरतों को ही केवल पूरा करने में सीमित होकर रह जाते हैं। यह वर्तमान की एक सामाजिक बुराई है, जिसके कारण धनियों और गरीबों के बीच की दूरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह मानव में बढ़ती असंवेदनशीलता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है, जहां हम अपने को जितना अधिक शिक्षित और संपन्न समझते, हम अपने को दूसरों से उतना ही अधिक तटस्थ और दूर कर लेते हैं। वहीं अपनी समृद्धि में गरीबों से अपने को दूर रखने के परिणाम को हम सुसमाचार में भी पाते हैं। यह हमारे लिए ईश्वर से अनंत दूरी का एक कारण बनती है, जिसे चाहने पर भी नहीं भरा जा सकता है। श्रोताओ, तिमथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे उस बुलावे की चर्चा करता है, जहां हम अपने विश्वास के कारण ईश्वर के अनंत निवास के अधिकारी होने हेतु बुलाए गए हैं। ईश्वर के निवास में उनके संग अनंत आनंद में सहभागी होने हेतु हमें धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और विनम्रता के वस्त्र धारण करने का निमंत्रण दिया जाता है। यह हमारे विश्वास को अपने प्रेमपूर्ण कार्यों में अभिव्यक्त करने का आह्वान करता है, जैसे कि यीशु ख्रिस्त ने स्वयं गलीलिया और यहूदिया के प्रांतों में जरूरतमंद लोगों की ओर अपने हाथों को बढ़ाते हुए अपने पिता की महिमा पूरी की। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपनी दीनता से विभूषित करें, जिससे हम अपनी समृद्धि में अहंकारी नहीं बल्कि विश्वास में धैर्यवान बने रहते हुए उनकी सहायता कर सकें, जो हमारी ओर सहायता हेतु अपनी आशा की निगाहें उठाते हैं।
हर पल धन्य मनो प्रभु को करो सदा गुणगान, हर पल धन्य मनो प्रभु को करो सदा गुणगान। जब जब गाऊं महिमा उसकी हर्ष मनाए मेरे प्राण,
हर पल धन्य मनाऊं प्रभु को करो सदा गुणगान, हर पल धन्य मनाऊं प्रभु को करो सदा गुणगान। जब जब गाऊं महिमा उसके हर्ष मनाए मेरे प्राण,
हर पल धन्य मनाऊं प्रभु को करो सदा गुणगान, पल धन्य मनाऊं प्रभु को करूं सदा गुणगान। महिमा मैं प्रभु मेरी संग है, जितना नाम जपे वो कम है, जब भी मैंने उसे पुकारा उसने भय से मुझे उबारा।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस शनिवार 24 सितंबर को हेलीकॉप्टर से असीसी पहुंचे, जहां वे इकोनॉमी ऑफ फ्रांचेस्को के अंतिम दिन के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय आयोजन में दुनिया भर के 120 से अधिक देशों से करीब 1000 युवा अर्थशास्त्री और उद्यमी एकत्रित हुए हैं। वे दुनिया की बड़ी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए असीसी शहर में एकत्रित हुए हैं। युवा लोगों ने संत पापा फ्रांसिस का स्वागत किया और विभिन्न प्रदर्शनों की शुरुआत की। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत ईसायह की पुस्तक से एक अनुकूलन के साथ हुई। संगीत के बाद 8 युवकों ने मंच पर खड़े होकर अपनी गवाही दी। इटली की अर्थशास्त्र छात्रा सेरेना ने बताया कि कैसे वह अपनी पढ़ाई में राज्यों, राष्ट्रों और संस्थानों को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देती है। वह कहती है कि इकोनॉमी ऑफ फ्रांचेस्को बैठक इस बात का जीता जागता सबूत है कि अर्थव्यवस्था पहले और सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संबंधों का मामला है, फिर वस्तुओं का। यह लोगों की बात है, फिर वस्तुओं की। पहले आम वस्तुओं की, फिर निजी वस्तुओं की। अगली गवाही बेनिन में एक गैर सरकारी संगठन के कार्यकारी निदेशक हेनरी टोनिन से मिली। हेनरी ने अपना जीवन हरित अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया, जिसे वह उन लोगों के जीवन में मदद करने के लिए काम कर रहा है जहां लोग एक आक्रामक पौधे से लड़ रहे हैं जो पानी के सतह को कवर करता है। वह इस पौधे से प्रभावित सभी विभिन्न समुदायों के साथ काम करता है और इसे उर्वरक में बदल देता है। फाकुंदो पासुतो अर्जेंटीना से हैं और 180C नामक एक परियोजना पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना एक ओर सामुदायिक अभिनेताओं के बीच संबंध की प्रणाली उत्पन्न करता है, दूसरी ओर प्रत्येक बैठक में हम एक समस्या का समाधान करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं और वहां से हम इस समस्या को कम करने के लिए मिलकर काम करते हैं। थाईलैंड की लिली रैलिन केवल 14 साल की है। एक पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में वे कहती हैं, हमें अन्य युवा महिलाओं और युवाओं को संसाधनों और अवसर देकर उन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो उन्हें रोक या पंगु बना देते हैं। केनिया के सैमुएल लेकाडो एक मसाई समुदाय में काम करते हैं। वे संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक सेवाएं चला रहे हैं। अफगानिस्तान की एक युवती याद करती है कि तालिबान के आने से महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले उसके 20 साल के काम को कैसे रद्द कर दिया गया। अक्टूबर में इकोनॉमी ऑफ फ्रांसेस्को द्वारा उससे संपर्क किया गया और तब वह इटली आने में सक्षम हो पाई। अंतिम गवाही देने वाले आंड्रिया थे, जो 9 साल से कैदी हैं। वे कहते हैं, इस समय उनके पास जीवन के अर्थ पर चिंतन करने के लिए बहुत समय है और किस कारण से वह इससे इतनी दूर भटक गए। वे कहते हैं कि अपनी गलती का एहसास होने के बाद से फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की और उसे लगता है कि वह सही रास्ते पर हैं। इन साक्ष्यों के अंत में संत पापा फ्रांसिस ने 3 दिवसीय आयोजन के दौरान युवाओं द्वारा भाग लिए गए विभिन्न गांवों के संक्षिप्त विवरण सुनने से पहले बात की।
पोप फ्रांसिस ने असीसी में आयोजित इकोनॉमी ऑफ फ्रांसेस्को कार्यक्रम में भाग ले रहे युवाओं का आह्वान किया है कि वे सामाजिक सापेक्ष और आध्यात्मिक स्थिरता पर ध्यान दें और गरीबों तथा ग्रह की पुकार सुनें। शनिवार को युवाओं को संबोधित कर संत पापा ने कहा, एक युवा जब दूसरे युवा में एक ही प्रकार की बुलाहट देखता और यह अनुभव सैकड़ों एवं यहाँ तक कि हजारों लोगों में दोहराया जाता है, तब बड़ी चीजें संभव हो सकती हैं। इकोनॉमी ऑफ फ्रांसेस्को कार्यक्रम में संत पापा ने युवाओं को याद दिलाया कि वे दुनिया की बेहतरी के लिए उसमें बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा, आप युवा ईश्वर की मदद से जानते हैं कि क्या करना है और आप क्या कर सकते हैं। इतिहास में युवाओं ने पहले भी ऐसा किया है। संत पापा ने स्वीकार किया कि पहले की पीढ़ी ने युवाओं के लिए कई प्रकार की समृद्धि छोड़ दी है, किंतु उन्होंने कहा कि उसने नहीं जाना कि ग्रह की रक्षा किस प्रकार की जाए और उसकी शांति किस प्रकार सुरक्षित रखी जाए। उन्होंने कहा कि युवा हमारे आम घर के निर्माता और शिल्पकार बनने के लिए बुलाए गए हैं। उन्होंने पृथ्वी एवं पर्यावरण के नए दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। पारिस्थितिक स्थिरता के अलावा पोप ने स्थिरता के सामाजिक संबंधपरक और आध्यात्मिक आयामों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा, इसका अर्थ है गरीबों के रुदन एवं पृथ्वी की पुकार सुनना और गरीबों को हमेशा ध्यान में रखना, आधुनिक दुनिया में सुख के अकाल को दूर करने के लिए संबंध बनाना और यह स्वीकार करना कि आध्यात्मिक पूंजी आर्थिक पूंजी से पहले है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। गरीबों के प्रति संत फ्रांसिस के स्नेह की याद करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि इकोनॉमी ऑफ फ्रांसेस्को को चाहिए कि वह गरीबों, दुर्बलों और कमजोर लोगों के प्रति सम्मान, प्रेम एवं चिंता प्रकट करे। इसका अर्थ सिर्फ गरीबों के लिए काम करना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना है। हमें संत फ्रांसिस की तरह गरीबी को अपनाना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को बदलना है, ताकि लोगों के द्वारा सामना की जा रही दयनीय स्थिति का सामना किया जा सके। संत पापा फ्रांसिस ने आगे बढ़ने वाले युवाओं के लिए 3 साइन पोस्ट के साथ अपनी टिप्पणी समाप्त की। उन्होंने उन्हें निमंत्रण दिया कि वे दुनिया को सबसे गरीब की नजर से देखें, उन लोगों की याद करें जो अपने हाथों से काम करते एवं उनके कार्यों को महत्व दें और अपने विचारों को ठोस कार्यों में बदलें। असीसी में आयोजित इकोनॉमी ऑफ फ्रांसेस्को के एक वार्षिक कार्यक्रम में भाग ले रहे युवाओं ने 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंत में असीसी के समझौते पर हस्ताक्षर किया, ताकि सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक आर्थिक प्रणाली को बेहतर किया जा सके। इकोनॉमी ऑफ फ्रांसेस्को कार्यक्रम का समापन शनिवार को हुआ, जहां संत पापा फ्रांसिस भी उपस्थित हुए और विश्व भर के हजारों युवाओं के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। संत पापा ने युवा अर्थशास्त्र एवं उद्यमियों का आह्वान किया कि वे खुद को दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध करें। समझौते में युवाओं ने अपनी पीढ़ी पर जो जिम्मेदारी है उसे स्वीकार किया और वे उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि आज और आने वाले कल की अर्थव्यवस्था सुसमाचार की अर्थव्यवस्था बन जाए। इकोनॉमी ऑफ फ्रांसेस्को समझौता विश्व इकोनॉमी के तरीके की एक सूची जारी करता है, जो ख्रिस्त के सुसमाचार के संपर्क में आकर बदल जाएगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।